Şetecim. Şetecim. एक सार्थक यात्रा नए क्षेत्र की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर संयुक्ता और हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अलका धनपत जी, और इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक ही है मॉरिशस में हिंदी शिक्षण। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमन है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मॉरिशस में हिंदी की यात्रा बहुत ही दीर्घकालीन और साधनामय रही है, और इस बहुत ही रोचक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अलका जी, और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
अभिनंदन डॉक्टर संयुक्ता जी, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इतनी प्यारे विषय पर कुछ बातचीत कर पाऊंगी, जो कहना चाहिए का कि मॉरिशस के दिल की भाषा है।
ज़रूर डॉक्टर अलका धनपत हिंदी सेवा में 3 दशकों से समर्पित हैं। मूलतः वे भारत भूमि की राजधानी नई दिल्ली से हैं। वहीं से उनका अध्ययन, अध्यापन एवं हिंदी सेवा प्रारंभ हुआ, और संप्रति मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में सीनियर लेक्चरर के रूप में आप कार्यरत हैं। हिंदी शिक्षण, पाठ्य पुस्तक लेखन, सृजनात्मक लेखन, नाट्य लेखन आदि में आप सर्वथा निपुण एवं अनुभवी हैं। आपको भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा जॉर्ज ग्रियर्सन इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो कृपया आप हमें सर्वप्रथम यह बताएं कि मॉरिशस में हिंदी शिक्षण संप्रति अभी क्या स्थिति है।
डॉक्टर संयुक्ता जी, मॉरिशस में हिंदी शिक्षण अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। सभी कहते हैं बैठकाओं से हिंदी शुरू हुई, और उस समय में बड़ी ही कठिन परिस्थितियां रही होंगी, यहाँ तक कि लोग भोजपुरी में बात करते थे। उस समय हिंदी को लेकर चलना, और कितनी खुशी की बात है, देखिए सूरीनाम में सरनामी हिंदी है, फिजी में फिजी बात है, लेकिन मॉरिशस का साहित्य आज भी हमें मानक हिंदी में दिखाई देता है। तो साधना देखिए कितनी लंबी की गई है। यद्यपि उनकी प्रस्तुतियों में भोजपुरी का तड़का है, उसमें कुछ क्रियोल और फ्रेंच शब्द भी हैं, जो होने भी चाहिए क्योंकि स्थानीय भाषा का प्रभाव पड़ता है, और यह उसकी सुंदरता है, विशेषता है। लेकिन बैठका से बढ़ते बढ़ते आज मॉरिशस विश्वविद्यालय तक हमारे छात्र PhD कर रहे हैं, और आप तो स्वयं इस क्षेत्र में वर्षों कार्य कर चुकी हैं, और आप जानती ही हैं कि कितने छात्रों ने मॉरिशस विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि उस धरोहर को, उस भाषा को अपने संस्कारों के साथ लगातार तीसरी चौथी पीढ़ी तक लेकर चले, और आज उसके सुखद परिणाम भी दिख रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी संस्थान में ये सब पढ़ाई हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मॉरिशस में हिंदी को लेकर पूरे विश्व में एक सम्मान है कि मॉरिशस में हिंदी की स्थिति संघर्षपूर्ण रही, आज भी है, उसको आगे ले जाने के लिए, लेकिन वो रुकी नहीं है यात्रा।
और कितने हर्ष की बात है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी है, माध्यमिक स्तर पर लगभग सभी स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई,
और सबसे बड़ी बात कि हिंदी विषय प्राथमिक स्तर पर ऐसा नहीं है कि उसके अंक जुड़ेंगे नहीं। इसके लिए भी अध्यापक यूनियन ने, टीचर यूनियन ने कितना बड़ा संघर्ष किया था, आज वह एक मुख्य विषय के रूप में है और छात्र उससे लाभान्वित होते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं, इसके लिए हम कहेंगे कि सभी जो हमारे हिंदी के सेनानी हैं,
बिल्कुल
हिंदी के हमारे जो शिक्षक हैं, जो कर्मठ तपस्वी हैं, वे धन्य हैं और बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो इसी प्रकार आपने बैठकाओं की चर्चा की डॉक्टर का, अभी बैठकाओं की क्या स्थिति है? क्या वही जो स्रोत संस्थाएं थी अभी भी जीवित हैं? क्या स्थिति है?
संस्थाएं बैठका चला रही हैं, और लेकिन उनकी चिंता यह है कि बच्चे अब अधिक बैठकाओं में नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे अगर हम कुछ कारण जो यथार्थ कारण है देखें तो अब क्या है, विद्यालय में भी प्रशिक्षित अध्यापक हैं, NCF मतलब जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जो पाठ्यक्रम है वह भी शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूरी तरह से दिशा निर्देशों में तैयार होता है, और सभी कुछ जैसे एक व्यवस्थित रूप से हो गया है। और जो छात्र हैं उनके साथ अध्यापक बहुत काम भी करते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन बैठका के अध्यापक उनकी छोटी छोटी गलतियों को, जिसे हम कहते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। कभी कभी कक्षा में 30 बच्चे होते हैं, 40 या 25 होते हैं, तो अध्यापक शायद उतना नहीं करवा पाता जितना बैठका का अध्यापक छात्र पर ध्यान दे पाता है। तो इसीलिए बैठकाओं की आवश्यकता आज भी है, बच्चे जाते भी हैं, अध्यापक भी हैं, और कितनी संस्थाएं भी उन अध्यापकों से जुड़ी हुई हैं और जाके उनके कार्य को देखते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की संख्या में कमी आई है।
जहाँ तक मेरा ख्याल है और भी स्कूलों में अतिरिक्त पढ़ाई भी होती है।
जी, शनिवार और रविवार को अन्य स्कूलों में बैठका की तरह से ही कक्षाएं लगाई जाती हैं और छात्र जाते भी हैं। कहीं कहीं पर संख्या काफ़ी है, ये इलाके के हिसाब से होता है, और कहीं पर संख्या कम भी है, लेकिन फिर भी आज भी जब हम बच्चों से सुनते हैं, जो बच्चे बैठकाओं में जाते हैं उनके बोलने का ढंग और हिंदी का जो संप्रेषण कौशल की कला है वह उनमें ज़्यादा पैदा होती है।
और खास यह भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने प्रवेशिका परिचय
उत्तमा तक की परीक्षाएं की, वे लोग भी इस बैठकाओं से ही लाभ उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तो जो छात्र उत्तमा को पास कर लेता है, इक्वल टू डिप्लोमा है, वह सीधे BA पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकता है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से छात्रों को मिली है कि उत्तमा का रिजल्ट आते ही यदि उन्होंने उसे पास कर लिया तो वे लोग 2 साल के लिए BA पार्ट टाइम का कोर्स लेकर, जहां रोज आने वाले बच्चे 3 साल में करते हैं, वे 2 साल में अपना पूरा कर लेते हैं। तो ये उन बच्चों की मेहनत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनका पूरा 1 साल बच जाता है उसमें।
और अलका जी, आप काफ़ी समय से महात्मा गांधी संस्थान से जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी संस्थान, जो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा के लिए एक मुख्य यज्ञ है
जी,
वहाँ पर हिंदी विभाग से काफ़ी समय से आप जुड़ी हुई हैं। विश्वविद्यालयीय स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है अभी?
वैसे तो महात्मा गांधी संस्थान में सभी भारतीय भाषाओं, लगभग उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, यहाँ तक कि अब तो चाइनीज भी है, तो ये सारी भाषाएं, और हिंदी उसके साथ जुड़ी हुई है, 5 ये भाषाएं और चाइनीज है, उधर भोजपुरी डिपार्टमेंट भी काम करता है। तो महात्मा गांधी संस्थान इन सब भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत है। हिंदी विभाग के पास जो BA ऑनर्स बच्चे करते हैं, BA पार्ट टाइम करते हैं, MA के बच्चे हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी संस्थान MI के साथ मिलकर उन कोर्सेज को भी उसमें मदद देता है, जैसे प्राइमरी टीचर्स का डिप्लोमा
MI माने मॉरिशस
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो जो हिंदी वाला भाग है वह हिंदी विभाग ही करता है, यहाँ तक कि कभी कभी DHTs भी आते हैं, तो उनका भी
जी
बिल्कुल छोटा कोर्स जो होता है उसमें भी MGI का भाग रहता है, क्योंकि जो भी भाषा से जुड़ा है वो MGI के साथ जुड़ ही जाता है। तो महात्मा गांधी संस्थान का यह जो योगदान है वह अपने आप में बहुत ही अनोखा है। जब भी हमारे प्रोफेसर्स बाहर से आते हैं, वे कहते हैं कि महात्मा गांधी संस्थान दुनिया में एक अलग तरह की संस्था है, जहाँ पर भारत की सभी, चाहे वो दक्षिण प्रदेश की भाषा है कि उत्तर की है, बराबर उस पर काम चलता है। अभी देखिए, नई किताबें निकली Grade 9 तक, सभी भाषाओं में लिखी गई, चाइनीज़ में, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, सभी में लिखी गई। और मैं बताना चाहती हूँ, महात्मा गांधी संस्थान की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, MGI RTI की वेबसाइट पर, तो इंट्रोडक्टरी कोर्स इन ऑल 8 languages महात्मा गांधी संस्थान ने लॉन्च किया है। तो ये 6 महीने का कोर्स है, तमिल, तेलुगु, मराठी, 8 भाषाएं हैं, आप सोचिए, भोजपुरी और संस्कृत उसके साथ जोड़कर, तो 8 भाषाओं में जो जिस भाषा में जाना चाहे फॉर्म भरकर इसका लाभ उठा सकता है, केवल वेबसाइट पर जाके उसे एक बार देखना होगा।
और आपसे बात करते हुए पता चला कि इस समय आप महात्मा गांधी संस्थान में स्थित लैंग्वेज रिसोर्स सेंटर की अध्यक्षा हैं।
जी, जी।
तो वहाँ पर कौन सी गतिविधियाँ, अभी कौन से ऐसे रोचक कार्यक्रम हिंदी को लेकर चल रहे हैं?
श्रोताओं, गतिविधियों को प्रारंभ करने से पहले मैं संयुक्ता जी का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ। वे भी जिस समय कार्यरत थी महात्मा गांधी संस्थान में, लैंग्वेज रिसोर्स सेंटर की हेड रह चुकी थी, और इस समय भाषा संसाधन केंद्र के पास एक पाणिनी लैब है जो श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जिस समय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उस समय उनकी ओर से, या भारत की ओर से कहना चाहिए, भाषा संसाधन केंद्र को वह पाणिनी प्रयोगशाला मिली थी। तो उसी में ही हमारे अध्यापक बैठते हैं और किताबें, इसी तरह से भाषा संसाधन केंद्र इस समय EVP जो एजुकेशनल वर्चुअल प्रोग्राम्स हैं उनकी तैयारी करता है, EDLP है, अर्लिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, उनकी डिजिटल प्रोग्राम है, उनकी तैयारी चलती है। तो ग्रेड 5 तक ये बन चुके हैं और अपलोड होने जा रहे हैं टैबलेट्स पर, अब ग्रेड 6 को लेके काम होना है। तो भाषा संसाधन केंद्र मंत्रालय के साथ मिलकर इन सब पर काम करता है और इसमें हमारे साथ एजुकेटर्स भी जुड़ते हैं, लेक्चरर्स भी जुड़ते हैं, पूरी एक टीम होती है, हर भाषा की एक टीम होती है, उसमें वेटर भी जुड़ते हैं। तो एक लंबे प्रक्रिया के बाद वह सब कार्य हमारे बच्चों तक या अध्यापकों तक पहुंचता है।
बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है उन्नति की राह पर चल रही है,
केवल ऐसा
दिन
नहीं
दुनी
है कि
रात चौगुनी, हम कह सकते हैं कि उन्नति हो रही है हिंदी की, एक बहुत ही उज्जवल भविष्य सामने दिखाई दे रहा है। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व धरातल पर अभी हिंदी किस दिशा में है, आपके क्या विचार है?
मेरे विचार में तो हिंदी को अब कोई रोक ही नहीं सकता है, जितनी तेजी से वह लोकप्रिय हो रही है और पूरी दुनिया में हिंदी से प्यार करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। भारत की तो अपनी मातृभाषा है उत्तर के क्षेत्रों की, लेकिन बाकी जहाँ जहाँ पर भी भारतीय गए, चाहे वे गिरमिटिया के रूप में गए, चाहे वे प्रवासी के रूप में गए, लेकिन अपनी हिंदी को वे छोड़ नहीं पाए। वे चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, लेकिन उनके भीतर जो कवि है वो हिंदी में लिखता है, उनकी किताबें छपती हैं। आप सभी को याद होगा अनुराग शर्मा जी अमेरिका से, जो महात्मा गांधी संस्थान हर 2 वर्ष में एक पुरस्कार घोषित करता है सृजन सम्मान करके इंटरनेशनल, उसमें अनुराग शर्मा जी विजेता के रूप में घोषित हुए थे। तो वे एक इंजीनियर हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वो जो हिंदी के प्रति प्रेम और हिंदी का बढ़ता रूप, हिंदी को अब कोई रोक नहीं पाएगा।
बहुत सुंदर। तो डॉक्टर अलका जी, आपके अमूल्य विचारों एवं अनुभवों के लिए कोटिशः धन्यवाद। हमारी यही शुभ भावना है कि आप हिंदी सेवा में ऐसे ही समर्पित भाव से कार्यरत सेवारत रहे। तो क्षितिज कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं, आपके स्नेहमय ध्यान के लिए हम अनुग्रहित हैं। नमस्कार।
धन्यवाद। नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।